శివ విరించినుతం శరణ్యం భృత్యార్తిహం ప్రణతపాలభవాబ్ధిపోతం వందే మహాపురుషతే చరణారవిందం. తేజ్ బహుత్ చల్ రే మే తో యే కహ రహా థా జ్యాదా తేజ్ హై కోయి నుక్సాన్ తో నహీ హై. అచ్చా, कुछ प्रसंग प्रस्तुत है जो सेठ जी के स्वभाव, कर्तव्य परायणता और व्यवहार के परिचायक हैं तथा हमारे लिए भी अनुकरणीय हैं. बढ़िया बात है सेठ जी की. एक पड़ोसी सेठ जी से अनबन रखता था, चूरू की बात है. उसकी स्त्री कहती फिरती थी कि जयदयाल का खून पीकर मुझे ठंड पहुंचेगी. संयोग की बात ही कि जिस दिन उसकी कन्या का विवाह था, उनके परिवार में कोई वृद्धा मर गई, रिश्ते में कोई मर गई, घर के सभी लोग दाह क्रिया में चले गए. इधर बारात ट्रेन से उसी समय स्टेशन पर आ गई. उस वृद्धा की मौत के कारण किसी को बारात आने का ध्यान नहीं रहा. सेठ जी स्टेशन गए, बारात को लिवाकर धर्मशाला में ठहराकर उसकी समुचित व्यवस्था कर दी. पड़ोसी के घर वालों को जब बारात आने का ध्यान आया कि अरे आज तो बारात आने वाली थी, हमको ध्यान नहीं रहा, तो वे लोग दौड़े दौड़े स्टेशन पर गए. स्टेशन मास्टर से पूछा कि क्या आज कोई बारात उतरी थी, क्या क्या गाड़ी अब आएगी क्या. स्टेशन मास्टर ने कहा गाड़ी तो समय पर थी, एक बारात उतरी जरूर थी. तो बारात कहां रुकी होगी, स्टेशन मास्टर ने कहा ये मुझे पता नहीं है, बारात आई थी. अब बारात का पता करने के लिए धर्मशालाओं में गए, इधर उधर पूछताछ करने पर किसी ने बताया कि आपकी बारात तो अमुक धर्मशाला में ठहरी हुई है. धर्मशाला में जाकर देखा, तब उस पड़ोसी ने व्यवस्था देखी कि इतनी अच्छी व्यवस्था, तो वो आश्चर्य में पड़ गया और वहां पूछताछ करने लगा कि व्यवस्था किसने की, क्योंकि हम लोग तो दाह संस्कार में गए हुए थे और किसी को हमने व्यवस्था बताई भी नहीं थी, फिर ये व्यवस्था और इतनी सुंदर व्यवस्था किसने की. इधर उधर बहुत पूछने पर पता चला कि यह व्यवस्था जयदयाल गोविंद का ने की है. तो वो नाम सुनते उसके तो होश उड़ गए. वो तुरंत सेठ जी के घर पर गया और सेठ जी के चरणों में गिर गया, माफी मांगने लगा. सेठ जी, मैंने तो आपके साथ ऐसा बर्ताव किया और आपने देखो मेरे साथ कितना अच्छा बर्ताव किया, मैं मेरे बर्ताव के कारण से बहुत लज्जित हूं और आपसे क्षमा चाहता हूं. सेठ जी ने बड़ी नम्रता से कहा कि मैं इसलिए ऐसा बर्ताव नहीं किया था कि आप मेरे को आकर ऐसा कहो, ये तो मेरा कर्तव्य था, क्योंकि तुम मेरे पड़ोसी हो, पड़ोसी के पड़ोसी को काम नहीं आएगा तो किसके आएगा, तुम्हारी इज्जत तो हमारी भी तो इज्जत है, इसलिए मैंने अपना काम किया है, आप पर कोई उपकार थोड़े ही किया है. उसके बाद उसने सेठ जी से हृदय से अपना बैर छोड़ दिया. इसी प्रकार सेठ जी निराश्रितों, जरूरतमंदों इत्यादि की सेवा आर्थिक रूप से करवाते रहते थे. गोविंद भवन कलकत्ता के व्यवस्थापक नारायण जी श्रावगी आए दिन मांगने वालों को देखकर अपने को तंग होना अनुभव करते एवं कभी कभी उन मांगने वालों को झिड़क देते थे। ये बात सेठ जी तक पहुंची। सेठ जी ने नारायण जी को बुलाकर समझाया कि नारायण, मांगने वालों से प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। नारायण जी ने कहा, सेठ जी ये लोग ठग बनकर रुपए लेने चले आते। सेठ जी बोले कि इस तरह का कोई आवे तो मेरे पास ले आना, मैं तुम्हें सिखा दूंगा कि इनके साथ कैसे व्यवहार किया जाता है। तब एक व्यक्ति अपनी स्त्री की बीमारी का बहाना करके सहायता के लिए आया। नारायण जी श्रावगी ने उसको सेठ जी के पास पहुंचा दिया। सेठ जी उससे बड़े प्रेम से बोले, भाई तुम अपने घर का पता हमको दे दो, हम तार भेजकर समाचार मंगाते हैं, दूर से आए हो, जाकर भोजन कर लो। वह आदमी वहां से भोजन करने के लिए चला किंतु वापिस नहीं आया। सेठ जी ने धोखेबाजों से बचने का उपाय तथा उचित कर्तव्य पालन का रास्ता दोनों ही दिखा दिया कि सीधा मत देओ, उसके घर पर पूछो पहले कि क्या हालत है। सेठ जी के सत्संग में आने वाले स्त्रियों के लिए नियम था कि वे अकेली न आवे, अपने परिवार के पुरुषों को जरूर साथ में लावे, क्योंकि सेठ जी को स्त्रियों का स्वतंत्र रूप से यात्रा करना, स्वतंत्र रूप से उनका निवास इत्यादि करना अच्छा नहीं लगता था। एक बार बांकुड़ा में काफी दूर से 3-4 स्त्रियां अकेले अर्थात बिना पुरुष के सत्संग के लिए आ गई। उनको अकेला आया देखकर वहां पर स्थित एक व्यक्ति ने उनको काफी खरी खोटी सुनाई, तुम अकेली चली आती हो, तुमको ही सत्संग की पड़ी है, अकेली क्यों आई, तुमको मालूम है पुरुष साथ में होना चाहिए, आ जाती हो अकेली। वे बिचारे बड़े खिन्न मन से उल्टे पांव रवाना हो गई। ऊपर कमरे में सेठ जी ने ये बात सुन ली, वे दौड़े दौड़े आए और उन चारों स्त्रियों को बड़े हाथ जोड़कर मनाने लगे। सेठ जी ने अपनी पगड़ी उतार कर उनके पैरों में रख दी और कहने लगे, आप नाराज होकर मत जाओ। स्त्रियों ने ऐसा अनोखा प्रेम देखकर बड़ा संतोष व्यक्त किया। फिर सेठ जी ने खूब प्रेम से भोजन कराया और वापिस भेज दिया। साथ ही अपने साथ के सत्संगियों से बोले, कोई अतिथि मेरे घर से अप्रसन्न होकर चला जाए तो फिर क्यों मेरे घर आने का महात्म्य क्या हुआ। मेरा घर ही नहीं, किसी के भी घर से कोई अतिथि हमारे व्यवहार से अप्रसन्न नहीं होना चाहिए। जयदयाल जी गोविंद का आध्यात्मिक प्रेरक तथा समस्याओं के निराकरण में अभ्यस्त थे। छोटी बड़ी सभी समस्याओं का समाधान भगवत प्राप्ति के साधन से जोड़कर कर देते थे। इस कारण आए दिन उनसे मिलने वाले बहुत लोग आते रहते थे। एक दिन मिलने वालों के क्रम में एक आदमी उनसे मिलने एक कमरे में आया और वहीं बैठ गया, उठने का नाम ही नहीं ले रहा था। सेठ जी के एक सत्संगी भाई ने उसको बार बार उठने के लिए संकेत किया, क्यों बैठो, उठो, लेकिन उसने कोई परवाह नहीं की। इस पर उस सत्संगी को क्रोध आ गया और थोड़ा झुंझला कर कह दिया, आप बाहर जाइए ना, और भी तो लोग मिलेंगे, आप अकेले ही हो क्या, कोई बात तो करते नहीं, चुपचाप करके बैठ गए, निकलो यहां से। इस पर सेठ जी ने उस सत्संगी भाई से कहा, अरे भाई ऐसा नहीं करना चाहिए, क्यों उठाते हो, उसने कहा कि सेठ जी काफी लोग मिलने आए हैं, ये अकेला बैठा रहे कैसे मिलेंगे, ये आपका काफी समय ले रहा है। सेठ जी ने बड़ी नम्रता से कहा कि मेरे समय का मैं ध्यान रखता हूं, तुम अकेले ही थोड़े ही हो, मेरे समय के बीच में ऐसे पंचायती मत किया करो, बाकी बाहर लोग काफी बैठे हुए हैं, इसका उत्तरदायित्व तो मेरे पर है, किसी का मेरे सामने या मेरे घर पर अपमान करना ये मेरा अपमान करना है, अपने व्यवहार को सुधार करो, ऐसी क्रिया करो कि कोई भी मेरे व्यवहार से अर्थात अपने व्यवहार से दुखी ना हो। ये सब एक एक आदमी इस बात का ध्यान रखो, मेरे पास रहकर तुम ये बातें नहीं सीखोगे और ऐसा ही स्वभाव बनाए रखोगे तो फिर तुम काय के सत्संगी बने। व्यवहार के अंदर पवित्रता लाओ, सहनशीलता लाओ, व्यवहार के अंदर से क्रोध को बाहर निकाल दो, वाणी में बड़ा मिठास, व्यवहार में मिठास और मन में बड़ा सम्मान का भाव रहना चाहिए, क्योंकि जो भी है वो सब भगवान का स्वरूप है। कितनी बढ़िया बात कही। सेठ जी के सत्संगियों में एक थे चंडी प्रसाद जी, जिनका स्वभाव था बिना बात के चिढ़ जाना, क्रोध कर देना। एक बार श्री घनश्यामदास जी जालान, जिनके कारण से गीता प्रेस गोरखपुर में गीता प्रेस खोली गई थी, सेठ जी से बोले कि सेठ जी या तो ये चंडी आपके पास रहेगा या फिर मैं रहूंगा, एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती। सेठ जी ने कहा कि भाई घनश्याम, वह तो जाने के लिए कह नहीं रहा है और तुमको जाने के लिए मैं कैसे कहूं, तुम यदि जाना चाहते हो तो मैं क्या कर सकता हूं, किसी को भी छोड़ना मेरे स्वभाव में नहीं है कि इसको छोड़ दो, इसका त्याग कर दो। एक बार सेठ जी का एक दांत था, वो हिलने के कारण से बहुत कष्ट देता था, बोलने में भी कष्ट देता था और वैसे भी वहां दर्द हो गया था। किसी ने कहा सेठ जी एक बार इसको तो मरुड़ी दे देंगे, दांत निकाल देंगे तो आपके आराम हो जाएगा। सेठ जी ने कहा नहीं भाई, मैं अच्छा नहीं मानता। कई दिनों तक वो दर्द करता रहा, फिर वो स्वतः ही गिर गया। किसी ने पूछा कि आपने दांत को कब विदा किया, कब दांत को निकाला। सेठ जी ने उत्तर दिया, हम अपने पास रहने वाले आदमी को भी विदा नहीं करते तो हमारे मुंह के अंदर रहने वाले दांत को क्यों विदा करेंगे, वो अपने आप ही छोड़कर चला जाए तो मैं क्या करूं, छोड़कर चला गया। हम स्वयं नहीं त्यागते किसी का। एक बार चंडी प्रसाद जी और रामेश्वर लाल जी जालान में खटपट हो गई। चंडी प्रसाद जी के व्यवहार से क्षुब्ध होकर रामेश्वर लाल जी ने सेठ जी से कहा, मैं अब यहां नहीं रहूंगा, मुझे आपका सत्संग करना होगा तो मैं ऋषिकेश चला जाऊंगा और वहां भी यदि खटपट करेगा तो परमार्थ निकेतन में रह लूंगा, आपके सत्संग में आ जाऊंगा और चला जाऊंगा, लेकिन मैं यहां नहीं रहूंगा। सेठ जी ने उत्तर दिया कि रामेश्वर, लोग युधिष्ठिर को अच्छा व्यक्ति मानते थे, इसलिए युधिष्ठिर के प्रत्येक व्यवहार पर सबकी नजर रहती थी, इसी प्रकार लोग मुझे सत्संगी मानते हैं तो मुझे भी थोड़ा अच्छा आदमी मानते हैं। मेरी अच्छाई इसमें नहीं है कि दो आदमियों की खटपट हो जाए तो मैं उनमें से किसी एक को जाने दूं, मेरी अच्छाई तो इसी में ही है कि सिंह और बकरी को एक जगह ही खिलाऊं। मैं आपको भी नहीं जाने दूंगा और चंडी प्रसाद को भी नहीं जाने दूंगा। कितनी अपनाने की उनकी भावना थी, सबको अपना के चलते थे। सेठ जी के मामा जी का लड़का था शिव बगस राय जी, तो तो सेठ जी के मामा जी के लड़के शिव भगत राय जी का किसी से लेन देन को लेकर विवाद हो गया। सेठ जी के पास पंचायत आई। शिव भगत राय जी ने सेठ जी से कहा, आप अपने स्वरूप के हिसाब से फैसला कीजिएगा, जो आप फैसला करोगे मुझे मंजूर है। सेठ जी ने सामने वाले से पूछा कि भाई तुम्हारा कितना रुपया इसमें पाना है? जितनी रकम सामने वाले ने बतलाई, सेठ जी ने शिव भगत राय जी से उतना रुपया दिलवा दिया। हेलो, सामने वाले ने राशि ज्यादा यह सोचकर बतलाई थी कि जितना बताएंगे उससे कम मिलता है, क्योंकि जो जितना बताता है उतना थोड़े ही कोई रकम देता है, तो जितना बताएंगे उससे कम मिलेगी, इसलिए पहले से ज्यादा बताया। लेकिन जितना ज्यादा बताया उतनी राशि मिल गई। फिर उसने कहा कि सेठ जी, मेरा तो इतना रुपया नहीं था, मेरा तो इससे कम था, ये ज्यादा रुपया वापिस ले लो। सेठ जी ने कहा, देखो भाई, अब ये रकम वापिस नहीं ले जाएगी। या तो तुमने कहा क्यों, कह दिया तो वापिस क्यों? उसने कहा कि अच्छा, ये ज्यादा रकम हमने ले ली, हम आपको देते हैं, आप किसी अच्छे काम में लगा दें। सेठ जी ने कहा, ये हमारा काम नहीं है, हम नहीं कह सकते। तुमने जितना रुपया मांगा हमने उतना दे दिया, हमारा किस्सा खत्म, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। एक बार किसी ने सेठ जी से कहा कि सेठ जी, आपके अंदर बड़ी ताकत है, आप हमें भगवान के दर्शन करा दो ताकि हमारा कल्याण हो जाए। सेठ जी ने कहा, यदि मेरे में ताकत हो और मैं यदि दर्शन करवा सकूं तो पहले तुमको क्यों कराऊं? क्योंकि तुमको तो मानव शरीर मिला हुआ है, तुम तो भगवान के दर्शन कर सकने के अधिकारी हो। जो बिचारे अधिकारी नहीं है उनको हम दर्शन कराएंगे। जैसे ये पेड़ पौधा है, ये बिचारे भगवत प्राप्ति कर नहीं सकते, इनको दर्शन कराए, आप अपने पुरुषार्थ से प्राप्त करो। फोकट का क्यों खाते हो, अन्न क्षेत्र का क्यों खाते हो, कमा के खाओ। कितनी बढ़िया बात कही। तीर्थ यात्रा के समय तोताद्री में, तोताद्री तीर्थ है, तोताद्री में लोगों ने वहां के अभिषेक से तेल की महिमा सुनी कि यहां तेल है, इस तेल को लेने से बहुत घर में सुख शांति रहती है। तो लोग टैन भर भर करके ट्रेन में रख लिए कि हम घर ले जाएंगे, क्योंकि वहां तेल की कोई कीमत नहीं लेते, फोकट में देते हैं। सेठ जी को पता चला कि हमारे सत्संगी लोग फोकट में तेल के कनस्तर ले आए हैं, तो उन्होंने सबको बुलाया और समझाया और कहा कि ये जो तेल का प्रसाद है, इसकी मर्यादा के विपरीत काम कर रहे हो, ये अन्याय है, ये बेईमानी है, आप या तो इसकी कीमत दे के आते या प्रसाद रूप से केवल एक छांटा रूप तेल है बस वो ले लेते, पर आप कनस्तर के कनस्तर भर लाए, ये बेईमानी है। सबसे कीमत ली और मंदिर में सैकड़ों रुपए जमा कराए, ऐसी सेठ जी की न्याय निष्ठा थी। एक और बता दें, एक बार एक मील मालिक सेठ जी से मिलने आया। बातचीत के बाद सेठ जी ने अपने सत्संगी भाई से कहा, भाई इनको भोजन कराओ। दोनों रसोई घर में गए। मील मालिक था वो सत्संगी भाई से बोला, आप मेरे पास बैठ जाइए, नौकर भोजन करवा देगा। उसने कहा कि सेठ जी ने मुझे आपको भोजन कराने भेजा है, मैं अपने हाथ से परोस कर खिलाता हूं। वे थाली में भोजन परोस कर मील मालिक के सामने आए। इस पर मील मालिक बार बार आग्रह करने लगा कि आप तो बैठ जाइए, किसी चीज की आवश्यकता होगी तो नौकर दे देगा। मील मालिक के संकोच में वह सत्संगी भाई उनके पास बैठ गए। सेठ जी अतिथि सत्कार का बहुत ध्यान रखते थे। अतिथि ठीक से भोजन कर रहे हैं इसे देखने सेठ जी वहां खुद पहुंचे। सत्संगी भाई को पास बैठा हुआ तथा नौकर को परोसते हुए देखकर वे बोले, अरे मैंने तुम्हें भोजन कराने के लिए भेजा था, तुम तो बैठ गए। सत्संगी भाई ने अपनी सफाई देते हुए वास्तविक बात बता दी कि मैं बार बार इनके कहने से बैठा हूं। मिल मालिक ने भी कहा कि मैंने इन्हें पास बैठाया है, ये नहीं बैठना चाहते थे। सेठ जी ने कहा कि ये तो अपने मत का प्रचार करेंगे ही, मेरे यहाँ नौकर से भोजन कराने की प्रथा नहीं है। सत्संगी भाई डर गया कि सेठ जी के इस व्यवहार से मील मालिक पर पता नहीं क्या असर पहुंचेगा, कहीं बुरा तो नहीं मान जाएगा। वापस जाते समय मील मालिक सत्संगी भाई से बोला कि मैं कई जगह घूमा हूं लेकिन सेठ जी जैसा अद्वितीय पुरुष नहीं मिला है। कितना ऊंचा, कितना पवित्र, कितना अच्छा सिद्धांत है। यह सुनकर सत्संगी भाई का मन शांत हो गया क्योंकि वह इसी अधेड़ बुन में लगा था कि सेठ जी के इस व्यवहार को कहीं बुरा तो नहीं मान जाएगा। एक और बता दें, जब देश का विभाजन हुआ तब जिस पाकिस्तान के नेता ने देश का विभाजन कराना करवाया था विशेष रूप से, उसका देहांत हो गया पाकिस्तान में, तो सत्संगी लोग ताली पीट पीट करके बड़े खुश हो गए कि अच्छा हुआ वो मर गया, अच्छा हुआ मर गया। सेठ जी बोले, किसी की मृत्यु पर खुशी नहीं होनी चाहिए। तो एक सत्संगी भाई ने कहा कि दैत्य लोग मरते थे तो देवता लोग राक्षसों की मृत्यु पर खुशी मनाते थे, दुंदुभियां बजाते थे और बहुत प्रसन्न होकर फूल बरसाते थे। सेठ जी बोले कि देखो, वे देवता थे, हम लोग देवता थोड़े ही हैं, हम तो महात्मा हैं, क्योंकि मनुष्य शरीर में जो आता है भगवान उसको महात्मा बनने के लिए भेजते हैं, नहीं बनते हैं, ये गलती है। इसीलिए कहा जाता है मनुष्य शरीर महात्मा बनने के लिए है।